और श्री गुरु श्री गुरु जैसे आप जानते हो कि भौतिकवादी व्यक्ति हैं आज के दिन कहां जाते हैं, होटलों में बड़े बड़े बैंड के साथ नाचते हैं और शराब पीते हैं। होटलों में एक एक टेबल के बुक करने के लिए लाख रुपए खर्चा आता है। आज इस समय अगर आप किसी होटल के सामने जाओ, और हर साल पंजाबी बाग के बाद मैं संतनगर जाता हूँ तो रास्ते में कई होटल आते हैं। होटल के सामने आप देखोगे बड़ी महंगी गाड़ियों की लंबी लाइन, लोगों को 6-6 महीने पहले बुकिंग कराना पड़ता है बड़े होटलों में। पर और वो सोचते हैं नया साल हम शुरू करेंगे शराब पीते पीते होटल के वातावरण में, पूरा साल खुशी से मनाएंगे। आप सब जो हो, आप हो असली बुद्धिमान व्यक्ति। आप जानते हो ये भौतिक नया साल है, आध्यात्मिक नहीं। जब भी आप जानते हो अगर ये नया साल भी हम खुशी से मनाना चाहते हैं तो हमें किसकी कृपा की भीख मांगनी चाहिए? परम भगवान की। और इसलिए आप सब इधर आए हो। हम भीख कैसे मांगते हैं? महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो जैसे मैंने कहा था मुझे संत नगर भी पहुँचना है, तो हम भगवतम के सातवें स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, साथ में प्रभा जी का तात्पर्य, क्योंकि प्रभा जी तात्पर्य में समझाते हैं असली खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। आप सबको खुशी चाहिए ना? असली आनंद चाहिए या नकली? नकली चाहिए तो होटलों में जाओ, असली चाहिए तो मंदिर में आओ। ठीक है, जल्दी जल्दी 5 मिनट पढ़ लो।
भागवतम सातवां स्कंद 10वां अध्याय 6ठा श्लोक, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। हमें सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में 5:29 में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी लोगों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की यही स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह उसकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ाता है तो जीव अलग से सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी करता ना रहे। यदि वह ऐसा करता है तो असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी तो आदेश देता है, तुम्हें यह करना है, पर असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीन जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन रहता है और भगवान विषय हैं, अर्थात परम जीवन लक्ष्य हैं। दुर्भाग्यवश इस जगत में फंसे हुए लोग इसे नहीं जानते। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेत रहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है।
हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर श्लोक और बड़ा सुंदर तात्पर्य। इस श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। अब सर प्रहलाद महाराज से परिचित हो, कौन है प्रहलाद महाराज? भगवान के उत्तम कोटि के भक्त या महाजन, हमारे शास्त्र में कहा गया है, बारह प्रसिद्ध महाजन हैं जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनमें से एक है प्रहलाद। स्वयं मूल नारदा शंभु कौमार कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्मो पुलीर भाई ये सकीर भाई। प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े। क्या था उनका दोष? भगवान के प्रति उनका आकर्षण था और उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जब वो माता के घर में थे। किसके माध्यम से? नारद मुनि के माध्यम से। प्रहलाद के पिता कभी समझ नहीं पाए मेरे बेटे को यह आध्यात्मिक ज्ञान कौन दे रहा है। वो सोचते थे कि शायद वैष्णवा वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे पुत्र के दिमाग को घुमरा करने के लिए। पर ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था माता के घर में और प्रहलाद के भक्ति के कारण उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े। तो जब उनके पिता का वध हुआ परम भगवान के द्वारा, भगवान किस रूप में प्रकट हुए थे उनके वध के लिए? हाँ, नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। उसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट अनुभव करना पड़ा। ये बात सच है, भगवान के सेवा के संबंध में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब इस संस्था के भक्त रूस में गए थे पहली बार प्रचार करने के लिए, उन दिनों में रूस का वातावरण कम्युनिज्म में था, तो कई भक्त हमारे जेल में गए, तीन चार भक्त जेल में मर भी गए, पर उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। क्यों? उनका लक्ष्य था चैतन्य महाप्रभु के संदेश की स्थापना करना। तो भगवान की सेवा के दौरान कई बार भक्तों को कष्ट अनुभव करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरे कारण तुमने इतना कष्ट सहा, मांगो मेरे से जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। प्रहलाद ने कहा, हे भगवान अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, एक तो मुझे भौतिक वर नहीं चाहिए, वर देना तो ऐसा वर दीजिए कि मेरी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं और मैं आपकी सेवा में जुड़ सकूं। जैसे आज के श्लोक में तो आपको पढ़कर सुनाया, प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं हूँ आपका सेवक और आप हो मेरे स्वामी। ये भाव रहना चाहिए, हम हैं सेवक भगवान के, निष्काम भाव के सेवक, भगवान है हमारे असली स्वामी। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था क्या होना चाहिए हमारा कर्तव्य। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी उस समय के प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, तो जब वो चैतन्य महाप्रभु को मिले, सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमें समाज में लोग सोचते हैं कि हमारा बड़ा ऊंचा स्थान है, पर हम ये भी नहीं जानते कि हम हैं कौन। आप सब जानते हैं आप कौन हो? कौन हो? कौन उत्तर देगा? कौन हो आप? सब चुपचाप। हाँ, भगवान के सेवा। ज्वेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास, हम सब क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। सदा दास ही रहेंगे, है कि नहीं? आपकी ये इच्छा तो नहीं है आज दास हैं पर कल हमने भी स्वामी बनना है? वो इच्छा तो नहीं है। कई मायावादी भाव के व्यक्ति होते हैं, कहते हैं आज तो दास है पर कल कल तुम भी भगवान बन जाओगे। नहीं, हमारा आनंद है सदा भगवान की सेवा करने में, है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, उन्होंने ये प्रार्थना की है, भगवान अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, ये वर दीजिए कि मैं सदा आपकी सेवा में रहूं। आप भागवतम के 34 स्कंद में पढ़ते हो ध्रुव महाराज का उपदेश, तो भगवान ध्रुव महाराज की तपस्या से भी बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने कहा, ध्रुव भांगो मेरे से, क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूं। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उत्तम भक्तों की संगत में रहूं, क्योंकि उत्तम भक्तों की संगत में रहूंगा मुझे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो भक्त जो है ये इच्छा रखता है कि सदा भक्तों की संग में रहे तो उस वातावरण से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। चैतन्य चैतन्यमृत में एक भक्त की कथा पढ़ते हो जिनका नाम था खोला बेचा श्रीदार। नाम सुना है आपने? खोला बेचा श्रीदार एक बहुत छोटा व्यापारी था, आप जैसे बड़ा व्यापारी नहीं, आप तो सब बड़े व्यापारी हो है ना, वो तो बहुत छोटा व्यापारी था। खोल का धंधा था उनका, केले के पत्तों से प्याले बनाते थे, और जब लोग जाते हैं गंगा के किनारे फूल अर्पण करने तो प्याले में डालकर फूल अर्पण करते हैं, और कभी कभी वो फल भी बेचता था। छोटी सी आमदन थी और 50% आमदन का वो खर्चते थे गंगा की सेवा में। दिन रात भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, इतना तक कि रात के समय अपने कुटिया में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जोर से बोलते थे। और जो पड़ोसी थे वो कहते थे, लगता है इस भूखे व्यक्ति को भूत सता रहे हैं, खुद भी नहीं सोता, हमें भी सोने नहीं देता। और रहने के लिए उनके पास केवल एक छोटा कमरा था जिसमें छत भी नहीं थी, पूरे घर में एक ही टूटा हुआ बर्तन था। पर महाप्रभु ने बड़ी कृपा की, महाप्रभु ने एक समय लगभग 8 घंटे के लिए वहाँ संकीर्तन किया था चंदकार जी के घर के समक्ष, क्योंकि चंदकार जी ने उनका संकीर्तन आंदोलन रोकने का प्रयास किया। और उसके पश्चात महाप्रभु को प्यास लगी 8 घंटा कीर्तन करने के बाद, और महाप्रभु जल पीने गए कहाँ कहाँ, खुला विशीदा के घर, वही झूठे प्याले से पीने लगे, उनके झूठे प्याले से गए पानी डालकर पीने लगे। खुला विजय श्रीदा ने कहा, क्या कर रहे हो, ये मेरा झूठा प्याला है, इसमें कैसे पी सकते हो। महाप्रभु ने कहा, मैं पी रहा हूँ अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों की को बड़ा आदर देते हैं। तो खुला विजय श्रीदार को एक समय चैतन्य महाप्रभु ने निमंत्रण दिया था और अन्य और भक्तों को भी, और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, भांगो में से क्या वर चाहिए, खुला बेचे जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, ऐश्वर्य धन। खुला बेचे सीधा ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हर जन्म में मैं हरि नाम का उच्चारण कर सकूं, हर जन्म में हमें दुकान में आओ और मेरे से सौदा करो। तो प्रहलाद महाराज ने भी यही भाव प्रकट किया है। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि साक्ष निष्काम भाव से हमें सदा भगवान की सेवा में रहना चाहिए। तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं, भोग भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्वी। असली भोक्ता कौन है, कौन है असली भोक्ता, आप हम कौन है असली भोक्ता, हाँ परम भगवान। तो हम सबके मन में ये भाव रहना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई सुविधा है, अगर हमारे पास कोई कला है, कोई योग्यता है, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए. किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में. तो 2014 समाप्त हो रहा है और एक डेढ़ घंटे में 2015 आरंभ हो रहा है. तो हमें ये नया साल आरंभ करना चाहिए किस भाव के साथ? इस भाव के साथ कि हम सब हैं सदा भगवान के सेवक. और असली भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण. और साधु संग में रहोगे तो ये संदेश सुनने में आएगा. अगर भौतिकवादियों की संगत में रहोगे तो उल्टा संदेश सुनने में आएगा. भौतिकवादियों की संगत में क्या सुनोगे? खाओ पियो जियो, संतों की संगत की आवश्यकता नहीं, आपको बिगाड़ देंगे. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि अगर मुझे असली आनंद चाहिए तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए. तो आप सब, जैसे मैं कह चुका हूँ, आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप उपस्थित हो क्योंकि आपके मन में ये भाव है, ये ज्ञान है आपके पास कि अगर हमें सुख चाहिए तो भगवान के शरणागत होना चाहिए. चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, असली सुख भक्ति बिना असंभव है. इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रहलाद महाराज के एक और प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग करते हैं. प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदु स्वर्त गतिम ही विष्णु. लोग ये नहीं जानते कि असली सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है. ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ग्रंथों के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से. तो हमारा कर्तव्य रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में जुड़े रहें. और कृष्णा भक्ति का उपयोग हमारा आश्रम में कर सकते हैं. वैदिक शास्त्र के अनुसार समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्ण और चार आश्रम में. चार आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, फिर बाद में गृहस्थ, जैसे आप में से कई भक्त गृहस्थ आश्रम में हो, पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं. कई शायद ब्रह्मचारी आश्रम में भी हैं मंदिर के पास. हरे कृष्णा. तो चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, हम सब का भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में रहें. भगवान की सेवा में पहले ठीक था, ये खराब कर दिया, पहले ठीक था. भगवान की सेवा में रहोगे, थोड़ा जोर से, पहले बिल्कुल ठीक जा रहा था. भगवान की सेवा में रहोगे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे. ये जो मनुष्य जीवन है ये हमें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है. और ये मनुष्य जीवन जब प्राप्त हो इसका हमें उपयोग करना चाहिए. किस लिए? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा. शास्त्र में कहा गया है अब यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जिज्ञास करो अब हो कौन, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे. हम अनेक प्रश्न पूछते हैं पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम पूछते हैं क्या? हमारे गुरु महाराज एक समय अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी ने वो लेक्चर शुरू किया एक प्रश्न के साथ. उन्होंने कहा, पूछा, अमेरिका के इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, मृत्यु का सामना सब करेंगे या नहीं? हाँ, लगता है आप लोग को नहीं करना पड़ेगा. जब प्रश्न पूछा किसने उत्तर ही नहीं दिया. मुझे तो लगा कि आप आश्चर्य हो गए प्रश्न सुनकर. तो मृत्यु का सामना सबको करना पड़ेगा. इंग्लिश में अगर आप कुछ कहना चाहो ना कि ये घटना जरूर बीतेगी तो आप क्या कहते हो? एज श्योर एज डेथ. डेथ से कोई बच सकता है? नहीं बच सकता. बुढ़ापेपन से कोई बच सकता है? पंजाबी भाग में नहीं बच सकते, नहीं. रोग पीड़ा से बच सकते हो। और देखा जाए समाज में जो क्लेश है, कष्ट है, बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? समाज में तनाव, चिंता बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है? हाँ, बढ़ते जा रही है। तो इन सब समस्याओं का हल कैसे होगा? हल होगा वैदिक शास्त्रों के संदेश को स्वीकार करके। वैदिक शास्त्रों का संदेश आप श्रीमद् भागवत में प्राप्त करते हो। जैसे आज हमने अभी आपको सातवें स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाया था, भागवत गीता द्वारा प्राप्त होता है। गीता जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के लिए है कि नहीं? एक अमेरिका की बड़ी प्रसिद्ध कांग्रेस वुमन है, तुलसी गोबार्ड। आपने नाम सुना है? ये है, कल हमारे संत नगर के मंदिर में आ रही है, शाम आज सुबह वृंदावन मंदिर में थी, मंगल आरती में, गुरु पूजा में, क्लास में, कल संत नगर आ रही है। तो तुलसी गोबार्ड कांग्रेस वुमेन है, जैसे भारत में है लोकसभा और राज्यसभा, और ये पली थी, है अमेरिकन, माँ बाप दोनों अमेरिकन हैं, पर उनकी माँ पली थी, इसको उनके प्रभाव में हवाई में, तो बच्चों के भी सारे हिंदू नाम है, तुलसी है इसका नाम, इसकी बहन का नाम है विष्णु, ने वृंदा और दो और नाम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें निमंत्रण दिया था भारत सरकार के अतिथि के रूप में, भारत की यात्रा करो। तो वो कल आज और कल वृंदावन में थी, कल दिल्ली आ रही है। तो उसने एक बड़ा अच्छा वीडियो भी बनाया है, वो जहाँ जाती है गीता की महिमा का गुणगान करती है और कृष्ण भगवान को स्थापित कर दिए परम भगवान के रूप में। पूरे अमेरिकन सरकार में वो एक ही व्यक्ति है जिसने पब्लिकली ये कहा कि मैं हिंदू हूँ। और पहले वो इराक युद्ध में भी अमेरिका के लिए लड़ी थी, तो बड़ी फेमस औरत है। तो वो कहती है मैं गीता पढ़ती हूँ। उसने एक बड़ा अच्छा, उसके कई वीडियो भी हैं जिसमें वो गीता की महिमा का गुणगान करती है। तो गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के लिए है, और गीता जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या बांटने के लिए। और आपको खुशी होगी, अभी मुझे सूचना मिली है कि आप सब भक्तों ने मिलकर 175,000 गीता बांटी, और अभी मैराथन समाप्त नहीं हुआ, 10 दिन और हैं, तो गुंजाइश है और 20-30,000 करने की। तो ये गीता हम क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि गीता का जो संदेश है आपको शांति देगा, ये शिक्षा देगा कि किस प्रकार आप जीवन को सुखी बना सकते हो। तो हम चाहते हैं कि आप सुखी बनो, भगवान चाहते हैं आप सुखी बनो। जब भगवान देखते हैं कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ रहा है तो ये उनकी विजय है। चित्रकेतु महाराज का उपदेश हमें भगवतम के 6वें स्कंद में प्राप्त होता है, और चित्रकेतु महाराज ने कहा जब भगवान देखते हैं कि कोई बद जीव उनकी सेवा में जुड़ रहा है तो ये उनकी विजय है। विजय क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं हम सब कहाँ निवास करें, पंजाबी बाग में कहाँ निवास करें? हाँ, कहाँ? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम। यहाँ इस वक्त आप निवास कर रहे हो पीतमपुरा, रोहिणी, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली, पर यह है कुंता जगत। कुंता जगत का अर्थ है जहाँ की क्या है, कष्ट ही कष्ट। भगवान कहते हैं आओ विकंद वैकुंठ जगत, पर वैकुंठ जगत में जाना है तो कोई कई गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा। हमारे जो अशुद्ध भाव है, अशुद्ध इच्छाएं हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें त्यागना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप भक्ति में जुड़ोगे तो इच्छा नहीं प्रकट होगी जैसे कि भक्तों की इच्छा रहती है ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को बांटे, आपके भक्त मिलकर रोहिणी का मंदिर बना रहे, कितने भक्तों को पता है कि रोहिणी में मंदिर बन रहा है, और कितने भक्त स्वभाव है जो रोहिणी और रोहिणी के पड़ोस के इलाके में निवास करते हैं। तो आप भक्तों के मन में ये इच्छा है, हम रोहिणी में बड़ा सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा था भक्तों को कि अगले साल ये प्रोग्राम आप लोग रोहिणी में करना, वहाँ चार गुना ज़्यादा लोग आ सकेंगे। तो ये नहीं कि भक्तों की इच्छा नहीं रहती, कि भक्तों की इच्छा हम मंदिर बनाएं, बस जीवों को जोड़ें भगवान की सेवा में। क्यों? क्योंकि ये है भगवान की इच्छा कि हम सब कहाँ लौटें, वैकुंठ धाम। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, माता पिता की सदा इच्छा रहती है कि उनकी औलाद सुखी रहे, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि उनकी औलाद सुखी रहे। तो भगवान जानते हैं कि असली सुख चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति योग का पालन। भक्ति योग का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। तो आप सबसे एक छोटा निवेदन है कि अगर आप 2015 में असली सुख अनुभव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप चिंता तनाव से बचो, अगर आप चाहते हो कि आप असली सुख प्राप्त करो, तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे करते हैं हम? ये सेवा आरंभ होती है वाणी के द्वारा, कानों के द्वारा, है कि नहीं? दूसरे शब्दों में हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। कली कले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं किस अनेक माध्यम, एक माध्यम है उनके नामों के द्वारा। तो भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। भगवान उनके नामों में अंतर है, कोई अंदर नहीं। हमें हरि का नाम लेना चाहिए। तो ये है छोटा सा निवेदन आप सबसे। आप बहुत ही जल्द एक बड़ा खूबसूरत नाटक देखोगे, आज मिल का, जिसमें आपको यही संदेश मिलेगा कि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। ज्ञान से अज्ञान से जो भी नाम ले उसका लाभ ही होगा। आप ऐसे कितने भक्त हो इस सभा में जो रोज 16 माला का जाप करते हो, और कितने भक्त हो जो 8 माला के करीब करते हो, और कितने भक्त हो जो 4 माला के करीब करते हो, और कितने भक्त हो जो 1 माला करते हो, और कितने भक्त हो जो 1 माला भी नहीं करते। अच्छा, तो 2015 के लिए आप भक्तों को रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, कुछ निर्णय करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी क्या कहते हैं, हमने नया साल शुरू हो रहा है, हमने नया साल में बहुत पढ़ाई करनी है कि हमें अच्छे नंबर आए। व्यापारी कहता है हमने धंधा बड़े सावधानी से करना है कि हम ज्यादा कमाएं। तो आप भक्तों को क्या निर्णय करना चाहिए? हाँ, कोई उदाहरण देगा, क्या निर्णय करना चाहिए 2015 के लिए? हाँ, भगवान के नामों का माला जरूर करना चाहिए। तो कम से कम 16 माला, 4 माला का जाप कीजिए, 8 माला का जाप कीजिए। इतना तो आपको पता है माला का जाप करने में लाभ भी है कि नुकसान की संभावना भी है। हाँ, आप कहोगे समय हमारा जाता है, यही समय हम फिल्में देख सकते हैं, फिल्म देखोगे, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ोगे, उनके द्वारा क्या अस्थि आनंद आएगा? भगवत में कथा पढ़ते हो एक राजा की, जिसके पास 10,000 सालों के लिए इंद्रिय तृप्ति की पूरी सुविधा थी, अंत में निराश था। तो हमें संतों की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। जैसे आप जानते हो जहर पियोगे तो मर जाओगे, तो आप अनुभव करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, जहर पी के देखते हैं मरेंगे कि नहीं। आपको पता है छठी मंजिल से छलांग लगाओगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो आप छलांग लगाकर देखते हो नहीं। तो उसी प्रकार शास्त्र में हर प्रश्न का उत्तर है, हमें इन इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। उन्होंने कहा साधु संग, साधु संग में रहो, जैसे आपके इस मंदिर में पंजाबी बाग मंदिर में शनिचरण का कार्यक्रम होता है, अनेक नामाहत भक्ति वृक्ष होते हैं, उनका लाभ उठाओ, हरि नाम का उच्चारण करो, भगवद गीता भगवतम पढ़ो और भगवान के आर्च विग्रह। आपके इस मंदिर में बहुत ही सुंदर कृष्ण बालराम जी हैं, है ना, जगन्नाथ सुभद्रा बालराम, श्री श्री राधिका रमन गोनिता है। और आपके रोहिणी मंदिर में क्या मूर्तियाँ होगी, हाँ हाँ, पंचतत्व सीक्रेट इज आउट। तो भगवान के आर्च विग्रह की सेवा करो। आप में से कितने भक्त हो जिनके घरों में गोनिता या राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं? ओके, जो खाओ भगवान को भोग लगाओ। भगवान गीता में कहते हैं जो भोग लगाए बिना खाए क्या खाने, पाप खाना चाहते हो नहीं, तो भगवान को भोग लगाओ। तो यही है आप सबसे निवेदन कि आप कृपा करके गंभीरता के साथ भगवान की कृष्ण की शिक्षा को अपनाइए। आप सब यहाँ उपस्थित हो क्योंकि आपकी श्रद्धा है भगवान की शिक्षा में। आप सब तो यही निवेदन है, इस संदेश को अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। एक बार फिर से आप सब श्रीला प्रभुपाद, श्री श्री राधिका रमन, कृष्णा बालराम, जगन्नाथ सुभद्रा बालराम की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप इस साल भगवान के शरणागत भी हो और भक्ति द्वारा असली आनंद प्राप्त कीजिएगा। हरे कृष्णा।